है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु की गहराई ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन के क्रम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 पद से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन एक साथ रेडियो में हो करके अलग अलग स्थानों पर बैठ करके कर सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जब आपके वचन में से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हर एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उन्हें स्पर्श करने पाए और उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप ही उन्हें बचाएं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर एक को अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी में बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। मेरे मित्रों, जंगल के समान यह पानी भी वास्तविक हो सकता है। परमेश्वर ने इसराइल को दो बार पानी से बचाया था, मिस्र से निकलने के बाद लाल सागर के पानी से और जंगल यात्रा के अंत में यर्दन नदी के पानी से। यहां नदी के समान पानी का अर्थ यह भी है कि एक बड़ी सेना उनका पीछा करेगी, जैसे यशायाह नबी की पुस्तक में उपमा दिया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 7 और 8 पद में। और हम देखते हैं यहेजकेल की अंतिम दिनों की भविष्यवाणी में उत्तर का राजा इसराइल के विरुद्ध चढ़ाई करेगा। शैतान एन केन प्रक्रेन इसराइल का सर्वनाश करना चाहेगा, वह कैसे रोका जाएगा? उसे रोकने का साहस किसी देश में नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उसे रोकेगा। वह उसे प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नष्ट करेगा जब वह इसराइल में प्रवेश करेगा। यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। मेरे मित्रों, इससे हमें संकेत मिलता है कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में क्या कहना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसराइल के बचे हुए जन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसका शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। लिखा है उसकी शेष संतान, ये शायद वे बचे हुए इसराइली हैं जो इस युग में परमेश्वर के गवाह होंगे, जो 144,000 हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। स्पष्ट है कि वे संपूर्ण संसार में परमेश्वर की गवाही दे रहे होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। यह व्यवस्था पालन है, अर्थात वे कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। मेरे मित्रों, संपूर्ण यहूदी विरोध शैतान से प्रेरित है और शैतान द्वारा इसराइल के सर्वनाश के सर्वोच्च प्रयास में अंत होगा। मिस्र के ईंट बनाने के खत्तों से लेकर हमान का फांसी का फंदा, हेरोदेश का निर्दयी आदेश, हिटलर का यहूदी सर्वनाश और महाक्लेश तक शैतान ने उन पर आक्रमण किया। क्यों? केवल एक बालक प्रभु यीशु मसीह के कारण। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहां पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 13 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 13 का विषय है समुद्र और पृथ्वी से उभरते पशु। सातवीं तुरही के फूंके जाने पर हमारे सामने सात नायक आते हैं। इनमें से पांच को हम अध्याय 12 में देख चुके हैं। सभी लाल अजगर, शैतान, स्त्री की संतान अर्थात मसीह यीशु, मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत और इसराइल के बचे हुए जन जो 144,000 हैं जिन पर मुहर लगाई गई कि वे महाक्लेश में सुरक्षित रहें। अध्याय 13 में शेष दो नायक प्रकट होते हैं। एक है समुद्र से उभरने वाला पशु जो राजनीतिक अधिकार रखने वाला एक मनुष्य होगा। दूसरा है पृथ्वी से उभरने वाला एक पशु जो धार्मिक अगुआ होगा। यहां ज्योति और अंधकार, परमेश्वर और शैतान में घमासान है। यह महाक्लेश के समय युग के अंत का प्रगटीकरण है। मेरे प्रियो, ये दो पशु वन पशु स्वरूप हैं, जैसा कि वास्तविक अनुवाद है, पशु होना ही बुरा है और वन पशु होना और भी अधिक घातक है। इन पशुओं की पहचान में बाइबल विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इस पहले पशु को मनुष्य कहते हैं, जबकि अन्य उसे रोमी साम्राज्य कहते हैं। कुछ विचारक दूसरे पशु को पाप का पुरुष कहते हैं, जबकि अन्य विचारकों के अनुसार वह मात्र एक भविष्यद्वक्ता है। कुछ पहले पशु को भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के समान ही मानते हैं। कठिनाइयों का कारण है कि राजा को राज्य से अलग करना असंभव होता है, क्योंकि एक निरंकुश शासक का अपना राज्य होना चाहिए, अन्यथा वह निरंकुश शासक नहीं हो सकता। यद्यपि इन दोनों में अंतर करना कठिन है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पहला पशु ख्रिस्त विरोधी है, पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य का शासक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उस पशु के सिंहासन। जी हाँ, इससे मैं यही कहूंगा कि उस सिंहासन पर कोई बैठता तो होगा। यह पशु ही उस सिंहासन पर बैठता है। यदि उस पशु का साम्राज्य ना हो तो वह पशु नहीं होगा। पहले पशु की पहचान खोज लेने के बाद दूसरे पशु को पहचानना कठिन नहीं है। वह एक मनुष्य है जो झूठा भविष्यद्वक्ता है। वह पहले पशु की उपासना के लिए मनुष्यों को विवश करेगा। वह ख्रिस्त विरोधी है। आज एक और विचार प्रचलित है कि ख्रिस्त विरोधी एक वास्तविक मनुष्य होने की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह का इनकार है। दूसरे शब्दों में, ख्रिस्त विरोधी प्रकट होने वाले मनुष्य की अपेक्षा झूठी शिक्षा है। ख्रिस्त विरोधी का अर्थ है मसीह यीशु का विरोधी, और दूसरा अर्थ है मसीह की नकल करने वाला। यूहन्ना दोनों ही अर्थों में इस शब्द का उपयोग अपनी पहली और दूसरी पत्री में करता है। ख्रिस्त विरोधी में ये दोनों समान हैं, या यूं कहें कि दोनों का स्वभाव है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 18 पद में यूहन्ना लिखता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यूहन्ना ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि यह अंतिम समय है। इसका अर्थ है कि हम लंबे समय से अंतिम समय में हैं। यूहन्ना यही नहीं कहता कि ख्रिस्त विरोधी आएगा, परंतु उसके युग में ही ख्रिस्त विरोधी आ गए थे। ख्रिस्त विरोधी की पहचान क्या है? पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 22 पद में लिखा है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ख्रिस्त विरोधी प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने का इनकार करता है। वह प्रभु यीशु के विरुद्ध रहता है। वह पृथ्वी पर मसीह यीशु का बैरी है। मेरे प्रियो, अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय में यूहन्ना हमें ख्रिस्त विरोधी के विषय में कुछ अतिरिक्त तथ्यों का प्रकाशन प्रदान करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 1-3 पद में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वरन वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। दूसरे शब्दों में, कोई मनुष्य हो या समुदाय हो या पुस्तक हो, जो भी प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करेगा ख्रिस्त विरोधी वही है। यदि कोई प्रचारक प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं करता तो वह भी मसीह का विरोधी है। अपनी दूसरी पत्री में यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की दूसरी पत्री उसके 7 पद में, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, ख्रिस्त विरोधी धोखा देने वाला है। वह मसीह होने का स्वांग मारता है या रचता है, जबकि वास्तव में वह मसीह नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा था, बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, आपको परख करके देखना है, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर से नहीं है। मेरे प्रियो, आपको अपने समूह को परखना है। हो सकता है कि ये प्रवंचित भक्त ख्रिस्त विरोधी का अनुसरण कर रहे हैं। जैतून के पर्वत पर प्रभु यीशु ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। झूठे मसीह उठेंगे तो आश्चर्य कर्म भी करेंगे। दूसरा पशु एक आश्चर्य कर्म करने वाला मनुष्य होगा, वह ख्रिस्त विरोधी होगा। अतः पहला पशु राजनीति में ख्रिस्त विरोधी होगा और दूसरा पशु धार्मिक ख्रिस्त विरोधी होगा। शैतान भी एक मनुष्य में सब कुछ डालने में सफल नहीं होगा। मेरे विचार में दो मनुष्य, दो पशु होंगे जो ख्रिस्त विरोधी होंगे। आगे हम देखते हैं समुद्र से निकलता पशु, उसका विवरण, राजनीतिक शक्ति एवं एक मनुष्य। मेरे प्रियो, इस अध्याय का पहला पद समुद्र से निकलने वाले पशु का वर्णन करता है। तो यहां पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 13 में आते हैं और उसके 1 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहां पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसको समुद्र से किसने निकाला? शैतान ने। धर्मशास्त्र में समुद्र विश्व की सब जातियों का प्रतीक है, जैसे अशांत महासागर। आगे लिखा है, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यह पशु मस्तिष्क को उलझन में डाल देता है। यदि मैं उससे अंधकार में सामना करूं तो मैं निश्चय जानता हूं कि हम एक ही दिशा में चलेंगे। अंतर बस यही है कि मैं बहुत आगे चल रहा होऊंगा। यह पशु शैतान की कलाकृति है। पहला पशु पुराने रोमी साम्राज्य का प्रधान है, रोम के टुकड़े हो जाने से, उसके विभाजन हो जाने से, और यही है जो एक पुरुष है जो उसे फिर से संगठित करेगा। स्पष्ट है कि परमेश्वर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर से अपने हाथ हटा लेगा और पृथ्वी शैतान को सौंप देगा, और मेरे विचार में यह यथार्थ न्याय है। परमेश्वर शैतान को पूर्ण स्वतंत्रता देगा कि वह यथार्थ न्याय करे, परंतु वह सफल नहीं होगा। यदि परमेश्वर ऐसा न करे तो शैतान नरक की आग में भी परमेश्वर को दोष देगा कि उसने उसे अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया, अन्यथा वह एक और राज्य स्थापित कर देता और अपना उद्देश्य सिद्ध करता। अतः परमेश्वर उसे यह अवसर देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए दानियल नबी की भविष्यवाणी को भी समझना अति आवश्यक है। यह पशु दानियल की पुस्तक के 7वें अध्याय में व्यक्त पशु के तुल्य दिखाई दे रहा है। वहां यह पशु रोमी राज्य का भविष्यवाणी का इतिहास दर्शाता है, जो छोटा सिंह और उसके द्वारा ढाया गया नाश तक की व्याख्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह चौथा पशु कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है, तदोपरांत उसके 7 सिरों से एक में 10 सिंग उगे, जिनमें से एक छोटा सिंग निकला, जिसमें बल से 3 सिंग उखड़ गए और अन्य 7 भी उसके द्वारा उखाड़ दिए गए। मेरे मित्रों, जिस समय यूहन्ना लिख रहा था, उस समय दानियल की अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी। 3 पशु, बेबीलोन, सिंह, मादी फारसी राज्य, रीच यूनान, चीता आदि सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी। यूहन्ना चौथे पशु और उस छोटे सिंह पर ध्यान देता है, क्योंकि चौथा पशु रोमी साम्राज्य उसके युग में था और रोमी साम्राज्य डोमिशियन ने ही उसे काला पानी का दंड दिया था। यूहन्ना दानियल की भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शी था। रोम में दुर्बलता का आना आरंभ हो गया था, तथापि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय के छोटे सिंह पर बल दिया गया है, जिसे यहां वन पशु कहा गया है, क्योंकि अब वह रोमी साम्राज्य पर राज कर रहा है। दानियल 7 का छोटा सिंह और प्रकाशित वाक्य 13 का वन पशु एक ही है। अतः आप देख सकते हैं कि दानियल 7 की समझ इस अध्याय को समझने के लिए नींव का काम करेगी। यह वन पशु पाप का मनुष्य और ख्रिस्त विरोधी है, अंतिम विश्वव्यापी निरंकुश राजा। इस अध्याय का अंतिम पद इस विचार की पुष्टि करता है। पद 18 लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हम अंतिम विश्व शासक की चर्चा कर रहे हैं। आज यूरोप को संगठित बाजार के विषय सब उत्साह से भरे हुए देखते हैं। इतिहास में अनेकों ने यूरोप को संगठित करने का प्रयास किया है। मेरे विचार में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने भी यूरोप को पवित्र रोमी साम्राज्य में गठित करने का विफल प्रयास किया था। अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, अनेकों ने भी प्रयास किया था, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी आदि। परमेश्वर अभी तैयार नहीं है और महाक्लेश तक वह इसे संयुक्त राष्ट्र नहीं बनने देगा। मेरी रुचि उनके स्वर्गिक बाजार पर है, इसलिए नहीं कि हम भविष्यवाणी की पूर्ति देख रहे हैं, परंतु इसलिए कि हम मंच तैयार करते हुए देख रहे हैं, या यूं कहें कि मंच तैयार हो रहा है, जिससे प्रकट होता है कि भविष्यवाणी पूरी होगी। सदियों से लोगों का यही कहना है कि यह संभव नहीं है कि यूरोप को संगठित किया जाए। यह तब तक असंभव है जब तक परमेश्वर तैयार ना हो। शैतान उस मनुष्य को लाएगा। सार्विक बाजार जो मात्र एक रोचक कारक है, 10 सिंह और 10 मुकुट महाक्लेश में रोमी साम्राज्य के विभाजन का प्रतीक है। 10 सिंह 10 राजा हैं, जो इस 10 क्षेत्रीय राज्य में राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय के 12 पद में इसकी पुष्टि है। छोटा सिंह इन 3 राजाओं को उखाड़ते हुए उभरता है और शीघ्र ही अन्य 7 देशों को अपने अधीन करके विश्व शासक बन जाता है। 7 सिरों का पहचाना जाना आसान नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद में उन्हें 7 राजा कहा गया है। वे 10 सिंगों के समान एक ही समय में राज नहीं करते हैं, वे काम क्रम में प्रकट होते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें रोमी सम्राट कहा है, जैसे उस युग का शासक डोमिशियन था। कुछ ने इन्हें रोमी राज्य में विभिन्न सरकारों का प्रतीक माना है, जैसे राजा, नगरपालिका, निरंकुश शासक, सैनिक शासक आदि। एक विचार यह भी है कि ये 7 सिर पूर्व काल में परमेश्वर की निंदा करने वाले राज्य हैं, रोम, यूनान, मादी फारसी, कसदी, मिस्र और अश्शूर। और पशु जिसका राज्य आने वाला है वह 7वां सिर है। इसके अतिरिक्त कुछ विचारकों का मानना है कि ये सात सिर अजगर के सात सिर हैं, जो अपार बुद्धि का प्रतीक है। शैतान अंतिम शासक पाप के पुरुष को शक्ति देता है, और मैं इनमें से किसी भी विचार को सिद्धांत नहीं मानता हूं, और आप भी यह न सोचें कि इसे मानना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, ये सातों सिर निंदा के दोषी हैं। गोवेट का कहना है कि परमेश्वर की निंदा दो प्रकार से प्रकट होती है। पहला, परमेश्वर के बराबर होने का प्रयास, अर्थात उसका स्थान लेने की अभिलाषा रखना। दूसरा, परमेश्वर को बुरा कहना या उसका नाम व्यर्थ लेना। रोम के राजा पहले इस निंदा के दोषी थे। उन्होंने स्वयं को ईश्वर समझा था। रोम के राज्य में सम्राट की पूजा करना अनिवार्य था। फरीसी दूसरी प्रकार की इस निंदा के दोषी थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा का ठट्ठा करते थे। परंतु यहां जो पशु है वह दोनों प्रकार की निंदा का दोषी है। मेरे मित्रों, यहां पर हम पशु के बारे में देख रहे हैं जो दो प्रकार की बातों को कहता है, और इसके अनेक विचार भी हमने देखे हैं, परंतु अंततः यही होता है कि वह ख्रिस्त विरोधी है। जो परमेश्वर के कार्यों का विरोध करता है उसका विरोध करता है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को हमें पहचानना है, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें स्थिर रहना है और सत्यता को जानना है। इसके लिए चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन में दें, ताकि हम वचन के ज्ञान को पाकर उसका सामना कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ऊपर बनाया अंबर, नीचे बनाई ये जमीन, लटकाए बिना सहारे चांद तारे, कहीं रोशनी से अपने रोशन कर दिया, जहां मिट्टी उठा कर तुमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की जाए।